ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम कल इस मुद्दे पर थे। हमारे भौतिक जीवन की जो दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं से सीखते हुए हमें इस भौतिक संसार के प्रयोजन को समझना है। और सबसे पहले जो माया देवी हमें आश्वासन दे रही है, उसमें संशय, भुक्त भोग परित्यक्ता दृष्ट दोषा, कि इस भौतिक संसार का जो भोग है, तथाकथित भोग, यदि दोष दृष्टि रखनी है तो उसमें दोष दृष्टि रखें और समझें कि हमें इस संसार से बाहर निकलना है। अब जब हम संशय प्रामाणिक तरीके से करते हैं इस संसार के विषय में, तो उसके पश्चात डिजायर, ये इच्छा हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए, न केवल जानने की कि वो कौन सा संसार है जहां पर किसी भी प्रकार के दोष नहीं है, वो कौन सा संसार है जो कि सब प्रकार की कुंठा से मुक्त है, जिसे कहते हैं वैकुंठ। सो वी कम टू दी थर्ड डी, दैट इज डिजायर। डिजायर इज द बेसिस ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये जो भौतिक संसार है, ये अश्वत्थ वृक्ष के समान है। उसका प्रतिबिंब, अश्वत्थ वृक्ष का प्रतिबिंब। तो सरोवर में इस अश्वत्थ वृक्ष के प्रतिबिंब को यदि देखना है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तो सरोवर में जल होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि वो जो जल है वो है भौतिक इच्छा, कि प्रतिबिंब बिना जल के नहीं दिखेगा। तो ये संसार में हम जो कुछ मायावी सुख देख रहे हैं, ये हमारी इच्छाओं से हमने इसका निर्माण किया। सब मायावी सुख जो है, बद्ध जीव वो निर्माता है अपने भौतिक इच्छाओं को लेकर, वो बनाता है। तो आप चाहिए, जितनी भी भोग की वस्तुएं हमने निर्माण की हैं, ये सब भौतिक इच्छाओं का फल स्वरूप है। न केवल एक वस्तु, बल्कि बड़े बड़े साम्राज्य हमने खड़े किए हैं इन भौतिक इच्छाओं के बलबूते पर। तो आप देखिए कि जो पशु हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या निर्माण करते हैं। मान लीजिए कोई पक्षी है तो एक घोंसला निर्माण कर ले, तो क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर वो इतना प्रगत नहीं है, इसलिए वो अगर कुछ निर्माण भी करते हैं तो वो बड़े पैमाने पर नहीं कर पाते, क्योंकि भौतिक इच्छा का प्रमाण, उसकी जो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड, वो नहीं है इतना उनके अंदर है, परंतु इतना नहीं है जितना हमारे अंदर है। और हम जब हमारे इस प्रगत सूक्ष्म शरीर का दुरुपयोग करते हैं, तो देखिए हमने क्या कर दिया है इस पृथ्वी का, इस पृथ्वी के पर्यावरण का, हमारी भौतिक इच्छाओं के वजह से। तो उपनिषद में बताया गया है कि चार प्रकार की बद्ध जीव की इच्छाएं होती हैं, जिससे वो अपना भौतिक जीवन प्रारंभ करता है और भौतिक जीवन जीता है, और इसी में उसका भौतिक जीवन समाप्त भी हो जाता है। सबसे पहली इच्छा, डिजायर टू एंजॉय सेक्स लाइफ। सेकेंड डिजायर इज टू बिगेट चिल्ड्रेन। थर्ड इज टू एक्यूमुलेट वेल्थ। फोर्थ टू ग्लोरीफाई वन सेल्फ फॉर द अबव थ्री। तो उपनिषदों में बताया गया है कि ये जो सबसे पहली इच्छा है, डिजायर टू एंजॉय सेक्स लाइफ, मैथुन आगार इस भौतिक संसार को बताया गया है। तो आध्यात्मिक संसार में है प्योर सेक्स लाइफ। प्योर सेक्स लाइफ का अर्थ क्या है? जिसके अंदर ये काम वासना नहीं है। भगवान को बहुत शुद्ध तरीके से प्रेम करकर उनकी सेवा करना, इसे आध्यात्मिक संसार में कहते हैं आदिरस, शुद्ध कृष्ण प्रेम, उसको आदिरस बोलते हैं। और वो जब विकृत स्वरूप लेता है इस भौतिक संसार में, तो वो काम वासना बन जाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि चाहे वो कोई मछली हो, कोई जीव जंतु हो, पशु जानवर पक्षी, या हम मनुष्य या देवता, ये काम वासना के वशीभूत हुए। और इतनी स्वाभाविक ये काम वासना इसलिए लगती है क्योंकि ये हमारे स्वाभाविक कृष्ण प्रेम का विकृत स्वरूप है। सो व्हाट इज स्पॉन्टेनियस फॉर द सोल बिकम्स स्पॉन्टेनियस फॉर द मटीरियल बॉडी। प्योर सेक्स लाइफ इज स्पॉन्टेनियस for the soul, and impure sex life that is spontaneous for the body. तो इसलिए ये उपनिषदों के अनुसार सबसे पहली भौतिक इच्छा, तत्पश्चात इस इच्छा की पूर्ति के फल स्वरूप उत्पत्ति होती है प्रजा की, या जब संतान की उत्पत्ति होती है, तो उसमें संतान की उत्पत्ति जब जीव करता है तो उसके अंदर ईश्वरी भाव आता है। तो न केवल हम आध्यात्मिक संसार छोड़कर यहां पर आए भोग विलास करने के लिए, बल्कि उसके साथ साथ हमारी ये भी इच्छा कि हम ईश्वर बने, कंट्रोलर। तो पहली इच्छा क्या है? एंजॉयर। और दूसरी इच्छा क्या है? कंट्रोलर। क्योंकि उसके अंदर भी एक अलग प्रकार का एंजॉयमेंट है कंट्रोलरशिप में। इसलिए कई बार आप देखो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग का कोई सिक्योरिटी वॉचमैन होगा, वो कहीं किसी झोपड़े में रह रहा होगा, उसकी तनख्वाह 2 या 3 हजार होगी, परंतु जब उसे वो पद दे दिया जाता है कि तुम इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी वॉचमैन हो, तुरंत उसे एक प्रकार का घमंड होने लगता है कि मेरे अनुमति बिना कोई यहां से प्रवेश नहीं कर सकेगा, मुझे ये अथॉरिटी मिला है। तो ईश्वरीय भाव। तो वैसे ही जब कोई संतान उत्पत्ति करता है, कोई पिता बनता है, तो उसके अंदर ये ईश्वरीय भाव आता है कि मुझसे ये पैदा हुआ है। सो ही बिकम्स द फॉल्स क्रिएटर एंड ही स्टार्ट्स थिंकिंग। इसलिए कई बार ब्रह्मा जी उनके अंदर भी, या कई ऐसे देवता उनके अंदर जब ईश्वरीय भाव ऐसा आ जाता है कि उनके बुद्धि को भ्रमित कर देता है वो ईश्वरीय भाव, तो भगवान को उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। जैसे ब्रह्मा जी कभी विमोहित हो जाते हैं, इंद्र, तो ये लोग सब बड़े बड़े ईश्वर हैं, परंतु फिर भी इन सब के ईश्वर परमेश्वर जो हैं उनको जब ये भूल जाते हैं तो इनको भी ठीक करने के लिए परमेश्वर भगवान को आना पड़ता है। इसके पश्चात ये जो अगली इच्छा, टू एक्यूमुलेट वेल्थ, कि जो मेरा भोग विलास है और कंट्रोलरशिप है उसको मेंटेन रखने के लिए सिक्योरिटी, टू एक्यूमुलेट वेल्थ। तो देखिए ये जो तीसरी इच्छा है उपनिषदों ने, इसको हमने अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, परंतु इसके पीछे बहुत दिमाग लगाकर ये चार इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं बताई गई, जिससे शुरुआत होती है हमारे बद्ध अवस्था की। तो बद्ध जीव न केवल इस भौतिक संसार में आना चाहा उसने, न केवल इस भौतिक संसार में आने के पश्चात वो भोगविलास करना चाहा, बल्कि उसे निरंतर कंसिस्टेंटली वो भोगविलास चाहिए रहता है, इसलिए ये प्रयोजन उसने किया वेल्थ, कि मेरा भोग विलास बना रहे बना रहे बना रहे। इसलिए हम देखते हैं कि पैसों के पीछे लोग इतना पागल क्यों हैं, और वो भी अब जैसे पशु पक्षी हैं, उनको जो रोज का मिल जाए आहार निद्रा भय मैथुन, जो उनका रोज का मिल जाए बस उतना ही, वो कोई बैंक वैंक में पैसे वैसे नहीं रखते, उनका कोई बैंक नहीं होता है जहाँ पर वो स्टोर कर रखेंगे कि एक महीने तक का और आगे का क्या प्रयोजन है, नहीं कुछ नहीं। तो हम लोग मनुष्य, हमारे आज का आहार निद्रा भय मैथुन का प्रयोजन हो गया, परंतु हमने उस उन चार चीजों को करते रहने के लिए, महीने साल सालों साल करते रहने के लिए हमने वेल्थ और पूरी सिक्योरिटी, ये पूरा जो सिस्टम, ये जो जिसको बिजनेस कहते हैं, पूरा जो ट्रांजैक्शंस होता रहता है, ये सब क्या है, कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू एंजॉय सेक्स लाइफ एंड कंट्रोलरशिप, और फिर फाइनली जो फोर्थ डिजायर इज कि कोई इसकी वाहवा करे। हमने जो इतनी बुद्धि लगाकर इस भौतिक संसार में भगवान या भगवान का जो ऐश्वर्य है उसको प्रस्थापित किया है, तो इसकी कोई वाहवाह भी करनी चाहिए। तो वाहवाह कौन करते हैं? हम में से ही हम ढूंढते हैं लोगों को, क्योंकि वो आध्यात्मिक संसार से तो कोई आने वाला है नहीं वाहवाह करने के लिए। जैसे कि कैदी जो हैं, मान लो कि आपस में कैदी, कई बार होता है ना कि जेल के अंदर कोई खेल कूद के कार्यक्रम टूर्नामेंट होते हैं, तो जेल के कैदी क्रिकेट का मैच लगाए आपस में और उसमें एक टीम जीत गई, तो उसकी सराहना करने कौन आएगा? जो जेल के बाहर हैं वो लोग उसकी सराहना करने नहीं आने वाले, और यदि वो जेल के बाहर जाकर लोगों को कहें कि मैंने सेंचुरी मारी, कौन है आप पहले बताइए? मैं नासिक सेंट्रल जेल का कैदी हूं। तो सबसे पहले तुम कैदी हो, तो कैदी होने के बाद फिर तुम कुछ भी करो, सब कुछ उसी दृष्टिकोण से देखा जाता है, उसी लिस्ट में सब कुछ चला जाएगा, अपराध की लिस्ट में। तो इसलिए कैदियों को यदि वाहवा चाहिए तो वो अन्य कैदियों से वाहवा इकट्ठा करेंगे। सो देयरफॉर द फोर्थ डिजायर इज दैट वी एक्यूमुलेट द सेम बाउंड पीपल विच मीन्स कंडीशन्ड सोल्स टू ग्लोरीफाई अस। इसलिए जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, रॉक स्टार हैं, मूवी स्टार हैं, ये लोग सब की वाहवाह कौन करता है? वो खुद बद्ध जीव हैं, वो खुद काम वासना के वशीभूत हैं, और अन्य जो उनकी ही तरह बद्ध हैं और काम वासना के वशीभूत हैं उनका वो लोग गुणगान करते। तो ये जो मटीरियल डिजायर्स हैं, दो उदाहरण इसके दिए गए हैं। ये भौतिक इच्छाएं हमारी, जैसे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, जानते हैं क्या होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, क्या करता है? कौन जानता है? हाँ, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे वो प्रवेश करना शुरू करता है, इट्स लाइक स्लो पॉइजन, हमारे अंदर के इम्यून सिस्टम को, हमारी शक्ति को, स्वाभाविक प्राकृतिक शक्ति को खत्म करना शुरू करता है। वैसे ही ये भौतिक इच्छाएं हैं, दे एक्ट लाइक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इट इज स्लो पॉइजनिंग। तो यदि आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी इस उम्र में मैं कुछ भौतिक इच्छाओं को कल्टीवेट कर रखूं तो उसमें हानि क्या है, मैं उस पर अमल नहीं करूंगा, इतना सब कुछ सुन रखा है ये हरे कृष्णा के लेक्चर्स में, तो थोड़ा डर भी लगता है, उन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने जाओगे तो थोड़ा डर भी लगता है, परंतु रख लूं पता नहीं कब काम आ जाए। क्योंकि हो सकता है कि ये इतना जो हरे कृष्णा का प्रॉमिस ये लोग कर रहे हैं, पता नहीं यदि ये झूठ निकले तो ना तो वहाँ का रहूँगा ना यहाँ का रहूँगा, फिर जो मेरी अच्छी खासी इतने वर्षों की भौतिक इच्छाएं हैं वो भी फिर से कल्टीवेट करना, उनको ढूंढ कर लाना मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ पर ये लोग तो अपना चलते बनेंगे हरे कृष्णा वाले। तो सो इट इज सेड इवन इफ यू डोंट एक्ट अपॉन योर मटीरियल डिजायर बट इफ यू कल्टीवेट देम इनसाइड इट विल एक्ट लाइक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इट विल स्टार्ट किलिंग यू। And therefore, the second example is इट्स कॉल्ड द टर्माइट इफेक्ट, दीमक। टर्माइट इफेक्ट का अर्थ ये है, जैसे कि कोई लकड़ी का खंबा है या लकड़ी का फर्नीचर है, तो दीमक क्या करता है, वो बाहर से उसे वैसे का वैसा बना कर रखता है, अंदर से खोखला कर देता। तो भौतिक इच्छाएं वो साधक को अंदर से खोखला कर देती है। इसलिए ज्यादातर साधना भक्ति में फ्रस्ट्रेशन कब आता है, जब हम एक तरफ तो हमारी भक्ति कर रहे हैं और दूसरी तरफ भौतिक इच्छाओं को भी पानी दे रहे हैं, फ्यूल डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे वो हमारे अंदर का जो उत्साह है उसको खोखला करता जाता है, खोखला करता जाता है, खोखला करता जाता है। तो इसलिए हमें इस बात से केवल तसल्ली नहीं रख लेनी चाहिए कि मैं चार नियम का पालन शारीरिक रूप से कर रहा हूं। डोंट जस्ट बी सैटिस्फाइड बाय फॉलोइंग द फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फिजिकली। वी हैव टू फॉलो द फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स इवन मेंटली। Because if you mentally do not follow, eventually it will come in your action, sooner or later. एक न एक दिन वो कार्यों में आने ही वाला है। तो जो famous Titanic, ये जो इतना प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध जहाज जो डूबा, तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं कि ये इतना विशाल काय जहाज और इसको इस कदर बनाया गया था इस जहाज को कि उन्होंने दावा दिया था कि ये ऐसा जहाज मनुष्य समाज ने, वैज्ञानिकों ने निर्माण किया है कि जिसे परवरदिगार भी नहीं डुबा सकता, भगवान भी नहीं डुबा सकता, ये ऐसा जहाज। और हुआ क्या कि ये जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए निकला, फर्स्ट मेडन वॉयज, एंड इट सेड दैट द वेरी एलिमेंट विच हेल्प्ड फ्लोट दिस शिप बिकेम द कॉज ऑफ इट्स सिंकिंग, वॉटर, है ना। पानी का जहाज पानी के वजह से वो तैरता है और वही पानी जब जम गया, आइसबर्ग हो गया उसका, उसी जमे हुए बर्फीले पानी से जब टाइटैनिक टकराया, तो वही जल अपने दूसरे रूप में कारण बना इतने बड़े टाइटैनिक को डुबाने का। तो लेसन क्या है, वही इच्छा हमारी जब इस भौतिक संसार में वो अलग रूप ले लेती है, तो इच्छा को खत्म नहीं करना है, क्योंकि वही इच्छा हमारे जहाज को तैराएगी जब उसको हम आध्यात्मिक बनाएंगे। परंतु वो इच्छा उसका दुरुपयोग कर उसको प्रदूषित कर और कितने सारे साधन हमने इकट्ठा कर लिए हैं हमारी इच्छाओं को प्रदूषित करने के, वो लिस्ट अनगिनत है। हमने कितने साधन हमारे ही उन भौतिक इच्छाओं से इकट्ठा कर उन भौतिक इच्छाओं को और ज्यादा प्रदूषित करने के लिए कर लिए। सो द सेम मटीरियल डिजायर becomes the cause of the downfall of the living entity, and the same desire when spiritualized will become the cause of liberation. तो नीति शास्त्र में एक सुंदर श्लोक में एक पहेली सामने रखी गई है, बहुत इंटरेस्टिंग ये पहेली है, रिडल है। आशा नाम मनुष्या नाम काचित आश्चर्य श्रृंखला, यया बद्धा प्रधावंती मुक्त तिष्ठंती पंगुवत। तो इस सुंदर नीति के श्लोक में कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि चेन से बंधा हुआ है, और चेन से बंधा हुआ व्यक्ति यया बद्धा प्रधावंती, बद्ध है परंतु दौड़ता हुआ दिख रहा है, प्रधावंती। और इसके विपरीत एक व्यक्ति जो मुक्त है, कोई चेन से बंधा हुआ नहीं है, वो एक जगह पर शांत बैठा हुआ दिख रहा है, मुक्त तिष्ठंती पंगुवत। तो बुझाओ इस पहेली को कि ये कैसे संभव है कि एक बाधित व्यक्ति दौड़ता हुआ दिख रहा है और एक मुक्त व्यक्ति एक जगह पर बैठा हुआ। तो आप लोग एक जगह पर बैठे हो, मतलब क्या हो, बोलिए। तो ये जो चेन है, श्रृंखला, किसकी श्रृंखला है? आशा नाम, आशाओं की, भौतिक इच्छाओं की श्रृंखला है जिससे ये बद्ध जीव बंधा हुआ है, और भौतिक इच्छाओं की चेन से बंधे रहने के वजह से उसे यहां वहां भागना पड़ता है। तो इतना जो यातायात चल रहा है मनुष्यों का, क्यों चल रहा है? जहां कहीं पर भी जाओ मनुष्य यहां से वहां जा रहा है, कोई घर से बाहर निकलकर कहीं जा रहा है, कोई कहां से वापस घर आ रहा है, कोई सैर सपाटे के लिए यहां वहां, इतना प्रधावंती भौतिक इच्छाओं कि उस चेन से बंधा हुआ ये बद्ध जीव। और जो इन सब भौतिक इच्छाओं से अपने आप को मुक्त कर दिया है, उसे कहीं भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए जैसे हाँ, मुझे याद है हमारे पार्टियां होती थी जब एयरफोर्स की पार्टियां, तो एयरफोर्स की पार्टियों में शराब जो है वो बहुत एक कॉमन आइटम। वेरी कॉमनली सर्वड आउट, पानी की तरह पीते हैं उधर। तो कोई एयरफोर्स की पार्टियों में शराब किसी के हाथ में देख ले, शराब का ग्लास, तो उसमें कोई अचरज नहीं करता। तो मैंने एक नियम बांधा था कि जब भी इन पार्टियों में जाना कंपलसरी था, तो जब भी इन पार्टियों में मुझे जाना पड़ता तो मैं जानबूझकर कांच के ग्लास में नींबू पानी लेता ताकि सबको दिखे नींबू पानी है। तो एक दफा हमारे कमांडिंग ऑफिसर उन्होंने देखा सबके ग्लास में रम है या विस्की है, और वो भी इंटरेस्टिंग एक रम एयरफोर्स में पिया जाता था, वो ब्रांड का नाम था ओल्ड मॉन्क। बहुत इंटरेस्टिंग ये रम का ब्रांड था ओल्ड मॉन्क। तो मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं खुद मॉन्क बनूंगा, सरेंडरिंग टू श्रील प्रभुपाद एन ओल्ड मॉन्क। तो ये कमांडिंग ऑफिसर, इन्होंने मेरे हाथ में नींबू का पानी देखा तो मेरे को पूछा, क्यों भाई तुम ये सब हट के क्या करते हो, तो पीते क्यों नहीं? तो मैंने कहा, सर मैं बहुत घमंडी इंसान हूं इसलिए नहीं पीता। तो उसे समझ में नहीं आया कि घमंड का इससे क्या संबंध है शराब का। मैंने कहा, सर मैं अपने जीवन में किसी सड़े हुए पानी का सहारा नहीं लेना चाहता मेरी खुशी के लिए। अब उसने अब हाथ में वही सड़ा हुआ पानी रखा हुआ था। सर आई एम टू प्राउड एंड ईगोइस्टिक, आई डोंट वॉन्ट टू टेक सपोर्ट ऑफ सम यू नो इनसिग्निफिकेंट डर्टी वॉटर, देयरफॉर आई लाइक टू बी इंडिपेंडेंटली एंजॉयर। मैं अपनी खुशी किसी पे पर निर्भर नहीं रखना चाहता इसलिए। तो बेसिकली जब आप भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे तो वास्तविक रूप में इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, इंडिपेंडेंस का अनुभव क्या है? अभी बद्ध अवस्था में हमें पता ही नहीं कि एक्चुअल इंडिपेंडेंस क्या है और एक्चुअल डिपेंडेंस क्या है। हम लोग इतना डिपेंडेंट है भौतिक इच्छाओं से कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम उसके गुलाम, इतने जन्मों से उसकी गुलामी करते आए। तो इसलिए यहां पर बताया गया है कि यदि हमें शांति और मुक्ति चाहिए तो हमें इन भौतिक इच्छाओं से अपने आप को इसकी श्रृंखला से मुक्त करना है। आशानाम मनुष्यानाम काचित आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्त तिष्ठंती पंगुवत। तो अब आध्यात्मिक इच्छाएं जो हैं, इसके विषय में ब्रह्म विमोहन लीला में बहुत सुंदर ये श्लोक है जहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, चंद्रिका विशद स्मेरई सारुणापांग वीक्षितई स्वकार्धानाम इव रजः सत्वाभ्याम सृष्ट पालक। जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के विस्तारित रूपों को देखा तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सारे विस्तारित रूप ब्रह्मा जी की ओर दृष्टिपात कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो दो चीजें यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का दृष्टिपात और भगवान की मुस्कान। तो जब हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जगन्नाथ जी का दर्शन करने जब हम गए तो देखिए जगन्नाथ जी का जो दृष्टिपात है, उनकी तो आंखें ऐसी खुली हुई हैं, बड़ी बड़ी आंखें, कि उनकी आंखों को देखकर कोई संशय नहीं रहेगा कि भगवान अपने भक्तों पर दृष्टिपात करते हैं या नहीं करते। ऐसी बड़ी बड़ी आंखें। और इसलिए जैसे हमारे रामकुमार पंडा जी कल बता रहे थे कि बेपलक, कभी वो पलक नहीं झपकते, ये हैं जगन्नाथ जी। बिना पलक झपके जो भगवान अपना दृष्टिपात या कृपा दृष्टि जिसको बोलते हैं वो बरसा रहे हैं, वो है यहाँ के जगन्नाथ जी। तो भौतिक इच्छा या हमारे अंदर की जो इच्छा है उससे संबंधित ये क्या है, तो सुखदेव गोस्वामी श्लोक में कहे हैं कि भगवान का जो दृष्टिपात होता है हमारे ऊपर, जब हम अर्च विग्रह का दर्शन करने जाते हैं तो न केवल हम देख रहे हैं भगवान को बल्कि भगवान भी हमें देख रहे हैं। नॉट ओनली आर वी सीइंग कृष्णा, कृष्णा इज ऑल्सो ग्लैंसिंग एट अस। सो द ग्लैंस ऑफ कृष्णा क्रिएट्स स्पिरिचुअल डिजायर्स। जस्ट लाइक व्हेन वी ग्लैंस वी क्रिएट मटीरियल डिजायर्स, है ना। हम लोग विषय वस्तु को देखते ही हमारे अंदर एक भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है और हम उसके क्रिएटर बनते हैं। सो कृष्णा हु इज द सुप्रीम क्रिएटर, ही इज द क्रिएटर ऑफ स्पिरिचुअल डिजायर्स। व्हाट अ वंडरफुल क्रिएशन इज दिस। विदिन अस ही क्रिएट्स स्पिरिचुअल डिजायर्स व्हेन ही ग्लैंसेस। तो अभी आपको लग रहा होगा कि अब हमने तो राधा मदन गोपाल जी का दर्शन कितनी दफा किया, जगन्नाथ जी का दर्शन इतने निकट से किया, उन्होंने भी किया हमारा। तो आध्यात्मिक इच्छा क्यों नहीं वैसे जागृत हुई जैसे यहां पर बताया गया है कि ही क्रिएट्स थ्रू ग्लैंड्स, क्योंकि उसको मेंटेन भी करना है। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं सो कृष्णा स्माइल्स अलोंग विद द ग्लांस। सो द स्माइल ऑफ कृष्णा मेंटेन्स दो स्पिरिचुअल डिजायर्स। सो व्हाई ऑल्दो स्पिरिचुअल डिजायर्स आर क्रिएटेड विद इन अस बट व्हाई दे आर नॉट मेंटेन्ड, वो बरकरार क्यों नहीं रहते आध्यात्मिक इच्छाएं हमारी। आपने अनुभव किया है आध्यात्मिक इच्छा आती है जाती है, आती जाती है, टिकती नहीं। हां जैसे ही कहा कि सुबह 4:30 बजे हम लोग नील माधव मंदिर कल निकलेंगे, हरी बोल, आध्यात्मिक इच्छा तुरंत 5 सेकंड के लिए जागृत हुई। और कल सुबह 4:30 बजे क्या होगा पता नहीं, उस आध्यात्मिक इच्छा को हम कहां दफना के आ जाएंगे। तो जब हम हमारे शरणागति से, हमारी प्रामाणिकता से भगवान को प्रसन्न करते हैं तो भगवान फिर मुस्कुराते हैं। और जब भगवान अपने दृष्टिपात के साथ मुस्कुराए तब ये दोनों सिद्ध होती हैं क्रियाएं। कौन सी? आध्यात्मिक इच्छाओं का निर्माण होना और उन आध्यात्मिक इच्छाओं का बरकरार रहना या उसे बनाए रखना, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेंटेनिंग स्पिरिचुअल डिजायर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि यदि हम प्रामाणिक हैं हमारी साधना भक्ति में तो जो इच्छा, प्रामाणिक इच्छा हमें कृष्ण भक्ति तक लाई है वो प्रामाणिक इच्छा हमें आगे भी ले जाएगी। कौन सी इच्छा? प्रामाणिक इच्छा। तो हमें हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं को बरकरार रखने के लिए कुछ अलग नहीं करना है। क्या करना है? वही प्रामाणिक इच्छा जिसके वजह से हम कृष्ण भावनामृत से जुड़े, हमें अपने आप को उस प्रामाणिक इच्छा से जोड़ना है, और वो प्रामाणिक इच्छा हमें जोड़े रखेगी आगे भी। ये है इच्छाओं, आध्यात्मिक इच्छाओं का गणित। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत थके हुए लग रहे हो, और ये थोड़ा गणित समझने में दिमाग की कसरत हो रही होगी, परंतु थोड़ी कसरत कीजिए। हाँ, ये दिस इज कॉल्ड दी इनर वर्कशॉप। यहाँ पे वर्कआउट करना है, मेंटल वर्कआउट। तो साधना भक्ति की तुलना आप आज स्विमिंग किए सब लोग? तो स्विमिंग का ये उदाहरण दिया गया है कि जैसे जब कोई तैरता है तो तैरने में जब वो अपने स्ट्रोक्स लगाता है, एक हाथ आगे करता है, पीछे पैर पेडलिंग करता है, तो उसने जब ये एक स्विमिंग का स्ट्रोक लगाया तो वो आगे गया, पानी में वो आगे गया। तो अब वो एक कदम आगे गया है उस एक स्ट्रोक के वजह से, तो दूसरे कदम आगे जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा, कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। तीसरा कदम और आगे जाने के लिए भी वही करना पड़ेगा। चौथा कदम, पांचवा कदम, जितना वो आगे जाना चाहता है उसे वही ओरिजिनल स्ट्रोक को रिपीट करते रहना है। बहुत सुंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है स्विमिंग स्ट्रोक्स का, कि कोई तैराक यदि 10 फीट आगे जाने के बाद सोचे कि बोर हो गया, चलो थोड़ा चेंज करता हूं, मेरे स्ट्रोक्स को चेंज करता हूं, तो चेंज करने से सब कुछ चेंज हो जाएगा, उसका जो प्रोग्रेस है आगे बढ़ने का वो रुक जाएगा। सो सिमिलरली इन साधना भक्ति, what brings us to Krishna consciousness will also maintain us in Krishna consciousness, and what will maintain us in Krishna consciousness will take us forward in Krishna consciousness, and it is the same thing we do again and again and again. ye Hare Krishna Mahamantra, आपको लग रहा होगा कि अरे मुझे 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, भगवान अभी थोड़ा कुछ वैरायटी लाओ इस महामंत्र में। तो अभी कलयुग के अंत तक ये महामंत्र यही रहने वाला है, भगवान आकर इसके अंदर कोई अपडेटेड वर्जन नहीं देने वाले हैं। यही यहां पर सारी जो विधियां चल रही हैं जगन्नाथ मंदिर में, वो सदियों से चल रही हैं ये पारंपरिक विधियां। इसलिए मॉडर्न थॉट प्रोसेसेस टू ऑलवेज कीप चेंजिंग, है ना। इसलिए आप देखो कोई भी प्रोडक्ट, कोई मॉडल आप खरीदते हैं, चाहे वो सेलफोन का हो, कार का हो, या मॉडल हो केवल, उसमें हर समय उसको रिवाइज करते रहना पड़ता है, रिवाइज अपडेटेड, हर समय उसको अपडेट करते रहना पड़ता है, है ना। परंतु साधना भक्ति आध्यात्मिक क्रियाएं ऐसी हैं कि वो निरंतर चिरकाल तक वो वही रहने वाली है। इसलिए वी हैव टू बिकम परफेक्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस विच इज गोइंग टू बी द सेम ईयर आफ्टर ईयर, लाइफ आफ्टर लाइफ। सो वॉट शुड बी दैट डिजायर विच हैज ब्रॉट अस एंड विच विल मेंटेन अस एंड विच विल टेक अस फॉरवर्ड? डिजायर फॉर गुड एसोसिएशन, वेरी सिंपल डिजायर। वेन यू डिजायर सत्संग, गुड एसोसिएशन मीन्स सत्संग, दैट गुड डिजायर और स्पिरिचुअलाइज्ड डिजायर विल गिव यू विवेक बुद्धि। देन वी कम टू द नेक्स्ट डी विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स विवेक बुद्धि, और विवेक बुद्धि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्धि का अंग है। यदि ये बुद्धि का अंग हमसे छिन जाए, डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि, तो हम देखते हैं कि अधिकांश मनुष्य वो अपने आप को ऐसी विकट परिस्थिति में डाल देते हैं क्योंकि वो अपने विवेक बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। अधिकांश आप देखिए, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में लिखा कि कलयुग में बीमारियां मैल न्यूट्रिशन के वजह से नहीं होगी, कलयुग में बीमारियां होंगी ओवर ईटिंग के वजह से, और गलत लाइफस्टाइल के वजह से, और वो सब है क्या? विवेक बुद्धि का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पावर। तो इसलिए जब हम आते हैं भक्ति मार्ग में, कृष्ण भावनामृत से जब हम जुड़ते हैं, तो विवेक बुद्धि की शुरुआत होती है ये दो चीजों से, मॉरल डिलेमा और एथिकल डिलेमा। मॉरल डिलेमा क्या है? चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो सबसे पहले हमें सही गलत ये बताया जाता है। मनुष्य जीवन प्राप्त जैसे ही हमने किया तो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट विवेक बुद्धि प्रकृति फिट करती है सही और गलत की पहचान करने की। सबके अंदर है, ये बात अलग है कि उसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं और जानते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं परंतु अमल नहीं करते उस पर। जानते हैं कि सही गलत क्या है परंतु, जैसे कि दुर्योधन, अब देखो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को साफ साफ भगवान के मुख पे कह दिया, जानामि अहम धर्म नचमे प्रवृत्ति, जानामि अहम अधर्म नचमे निवृत्ति। हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, मुझसे पालन नहीं होगा, और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, मैं छोड़ नहीं सकता। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ डीमन. हाउ इज अ डीमन डिफाइंड? वन हु नोज वॉट इज राइट डजंट डू इट, वन हु नोज वॉट इज रॉन्ग डजंट गिव इट अप. तो हमको लग रहा होगा बदमाश दुर्योधन, अरे हम सब के अंदर दुर्योधन बैठा हुआ है. वी ऑल इन कलयुग, वी ऑल हैव दुर्योधन एंड अर्जुन बोथ विद इन अस. यहां तक कि जब हम भक्ति मार्ग में भी लग जाते हैं, और भक्ति मार्ग में लगने के बाद तो बहुत ऊंचे ऊंचे आवाज में सुनाई देता है सही क्या है गलत क्या है, है ना, बड़े बड़े माइक्रोफोन पर सुनाया जाता है सही क्या है गलत क्या है. ऐसे जगहों पर लाकर सुनाया जाता है, वीडियो द्वारा दिखाया जाता है, सुनाया गया दिखाया गया अनुभव किया गया, फिर भी भक्ति में मार्ग में लगने के पश्चात भी हमारे अंदर का जो दुर्योधन है वो हमारी भाषा में, जैसे दुर्योधन ने संस्कृत में कहा, जानामि अहम धर्म न च मे प्रवृत्ति, संस्कृत में कहा उसने, हम हमारी मूल भाषा में बोलते हैं यही श्लोक, चाहे वो मराठी हो चाहे वो हिंदी हो चाहे वो गुजराती हो चाहे वो फारसी हो चाहे कोई भी भाषा हो, हम हमारी निजी भाषा में बोलते रहते हैं, हमारा मन बोलता रहता है. चाहे जगन्नाथ जी के सामने हो, मदन गोपाल जी के सामने हो, हरिनाम ले रहे हो, हमारे अंदर का दुर्योधन हमारी भाषा में बोलता रहता है, भगवान जानामि अहम धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अहम अधर्म न च मे निवृत्ति. तो ये है हमारे डिस्क्रिमिनेशन, ये जो फोर्थ डी है इसकी शुरुआत. और जब तक हम इसकी सही शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति में सैनिटी जिसको कहते हैं, एक एकाग्रता जिसको कहते हैं, वो मेंटेन कभी नहीं कर पाएंगे. और इसके ऊपर है एथिकल डिलेमा. एथिकल डिलेमा ये चूजिंग बिटवीन टू राइट थिंग्स. तो यदि हमारे विवेक बुद्धि में ये प्रश्न उठे कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं या वृंदावन जाऊं, तो समझ लेना चाहिए कि प्रोग्रेस कर रहे हैं. हाँ, और हमारी विवेक बुद्धि में यदि ऐसे प्रश्न उठे कि जगन्नाथपुरी जाऊं या सापुतारा जाऊं, या गोवा जाऊं, तो समझ लेना चाहिए कौन से लेवल पर हैं. मॉरल डिलेमा, अभी तक आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, बहुत पीछे हैं अभी, अभी तक केवल राइट रॉन्ग में अटके हुए हैं. सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वे टू जज योरसेल्फ, हाउ मच हैव यू एडवांस्ड एज फार एज योर डिस्क्रिमिनेशन पावर इज कंसर्न. और वैसे ही साधना भक्ति के अंदर कि मैं श्रवण करूं या जप करूं, समझ लेना चाहिए एडवांस्ड विवेक बुद्धि है. अगर ऐसे प्रश्न पूछ रहा है ना। इसलिए जब नए नए आते हैं भक्ति में तो हमारे प्रश्न क्या होता है कि माला करूं या माला के पीछे जाऊं। और फिर एडवांस्ड है कि 16 माला करूं या 25 माला करूं, है कि नहीं। तो मॉडर्न एजुकेशन जिसमें दुर्भाग्यवश हम सबको लगना पड़ा, मॉडर्न एजुकेशन, तो मॉडर्न एजुकेशन भी हमें डिस्क्रिमिनेशन सिखाता है। किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन सिखाता है? मॉडर्न एजुकेशन हमें सिखाता है डिस्क्रिमिनेट बिटवीन लॉस एंड गेन, फायदा नुकसान। वो लोग हमको प्रशिक्षित कर रहे हैं किसमें, फायदा नुकसान उसमें भेदभाव कर कहां फायदा है वहां बुद्धि लगाओ, नुकसान से कैसे बचो, कैसे फायदेमंद हो, है ना। सब जगह पर बाहर जाओ, सब प्रकार के कोर्सेस क्या सिखा रहे हैं, कैसे ये कोर्स से तुम फायदेमंद हो जाओगे, इस कोर्स से इतने पैसे कमाओगे। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, स्पीक लाइक अमेरिकन। क्यों क्यों भाई, क्यों स्पीक लाइक अमेरिकन? सो दैट यू कैन गो टू अमेरिका। क्यों अमेरिका? 1 into 45 dollars, है ना। तो मैं हाल ही में एक विद्यार्थी को ये प्रश्न पूछ रहा था दिल्ली में, वाई आर यू सीकिंग नॉलेज? सो दैट यू कैन गेट अ जॉब। Why do you want a job? So that you can earn money. क्यों शिक्षा ग्रहण कर रहे हो? ताकि नौकरी मिल सके। नौकरी क्यों चाहिए? ताकि आमदनी। तो फिर लॉजिक क्या हुआ? A equals B, B equals C, so A equals C. एक बार एक लेडी टीचर स्टूडेंट्स को ये लॉजिक सिखा रही थी, ए इक्वल्स बी, बी इक्वल्स सी, सो ए इक्वल्स सी, उदाहरण से समझाओ। तो एक विद्यार्थी ने उदाहरण से समझाया, टीचर आई लव यू, यू लव योर डॉटर। So I love your daughter. A equals B, B equals C, so A equals C. So knowledge equals job, job equals money, so knowledge equals money. इसलिए मैं हमने गीतामृत में बता रहा था कि गुरुकुल सिस्टम में क्या बताया जाता था, नॉलेज इज वर्च्यू। आजकल नॉलेज इज पावर, है ना। कितने वो ब्लैक बोर्ड पर टुडेज मोटो या हमारे स्कूल का मोटो लिखते ना, नॉलेज इज पावर। व्हाट इज दैट पावर? दिस इज दैट पावर। गुरुकुल सिस्टम के अनुसार क्या था? नॉलेज इज वर्च्यू। मूल्यों को जो दे वो है शिक्षा। फिर दूसरा डिस्क्रिमिनेशन क्या है? विक्ट्री एंड डिफीट। यहां पर हम देखो श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं पांडवों के विषय में जो हर समय असफल रहे और उनको हमने महाजन बनाया है, इस भौतिक संसार में लोग किसको महाजन बनाते हैं? द सक्सेसफुल पीपल, दे आर मेड इन टू द हीरोज, दे आर द सेलिब्रिटीज। और जो आध्यात्मिक पथ में असफल रहे, जटायु, जटायु वॉज अनसक्सेसफुल, ही वॉज अ फेलियर, बट वी वर्शिप हिम, वी वर्शिप हिम बिकॉज द कैलकुलेशन, द इक्वेशन इज कंप्लीटली ऑपोजिट। और मॉडर्न एजुकेशन टीचेज अस टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता। बस उसके अंदर तुम भेदभाव जान लो, व्हाट इज लाइक, व्हाट योर सेंसेस लाइक, व्हाट योर माइंड लाइक्स, व्हाट योर माइंड एंड सेंसेस डिसलाइक, बस दैट इज कॉल्ड मॉडर्न एडवांसमेंट, डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन दीज ड्यूअलिटीज। सो वी हैव आवर टुडेज वीडियो, साउंड है चालू, पता है आपको? सो दिस इज कॉल्ड द स्कूल ऑफ क्रेजीज।
क्वेश्चन नंबर वन, जवाब सोच समझ के देना, ठीक है। एक एरोप्लेन में 50 ईंट थी, उसमें से एक ईंट नीचे गिर गई, बताओ एरोप्लेन में कितनी ईंट रह गई?
सिर्फ 49 ईंट रह गई।
वेरी गुड। अब बताओ, अगर हिरन को फ्रिज में रखना है तो कैसे रखेंगे? 3 सेंटेंस में बताना।
सर, फ्रिज खोलेंगे, हिरन उसमें रख देंगे और फ्रिज बंद कर देंगे।
गुड। अब बताओ, अगर हाथी को फ्रिज में रखना है तो कैसे रखेंगे?
सर, फ्रिज खोलेंगे, हाथी को उसमें रखेंगे और फ्रिज बंद कर देंगे।
इडियट, हाथी फ्रिज में कैसे आएगा जब तक हिरन को बाहर नहीं निकालोगे? कितनी बार कहा है क्लास में ध्यान लगाकर बैठे करो, सारी चीजें ध्यान से सुना करो, यू आर फेल। जंगल में शेर की शादी थी जिसमें सारे जानवर गए सिवाय एक को छोड़कर, बताओ कौन?
सर, पता नहीं।
सर, हिरन नहीं गया शादी में, क्योंकि फाउंडेशन में बताया था ना कि हिरन तो फ्रिज के अंदर है।
वेरी गुड पप्पू एंड रिंकी, यू आर फेल। फाउंडेशन का पढ़ाया हुआ इतनी जल्दी भूल गए, तो आगे जिंदगी में क्या याद रखोगे? जंगल में एक तालाब है, उस तालाब में 3 फुट गहरा पानी है, एक बूढ़ी अम्मा को वो तालाब पार करना है, लेकिन बूढ़ी अम्मा के पास नाव नहीं है और उस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ है, क्या बूढ़ी अम्मा उस तालाब को पार कर पाएगी?
सर, बूढ़ी अम्मा तालाब पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि बूढ़ी अम्मा के पास किश्ती भी नहीं है और बूढ़ी अम्मा पैदल भी नहीं पार कर सकती, क्योंकि उस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ है, वो बूढ़ी अम्मा को खा जाएंगे। सर, बूढ़ी अम्मा आसानी से तालाब पार कर लेगी, क्योंकि इंटर में बताया था ना कि सारे जानवर शेर की शादी में गए हुए हैं, इसका मतलब तालाब में एक भी मगरमच्छ नहीं है, सब शेर की शादी में गए हैं, इसलिए बूढ़ी अम्मा आसानी से तालाब को पार कर लेगी।
वेरी गुड आलू, लगता है तुम फाइनल पास कर ही लोगे। सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर और दो। ध्यान से सुनना क्वेश्चन। वो तालाब पार करते हुए बूढ़ी अम्मा की मौत हो गई, बताओ कैसे?
सर, बूढ़ी अम्मा का पैर फिसल गया होगा तालाब पार करते हुए, जिसकी वजह से बूढ़ी अम्मा की मौत हो गई होगी।
अरे लगता है सारे निकम्मे इंस्टीट्यूट की किस्मत में ही लिखे गए। दूसरी चीज पढ़ते हो तो पहली भूल जाते हो, और तीसरी पढ़ते हो तो दूसरी को पीछे छोड़ाते हो। तुम लोग प्रोफेशनल्स बनने के लायक नहीं हो। फाउंडेशन में बताया था ना कि एरोप्लेन से एक ईंट गिरी थी, वो ईंट फाइनल में आकर बूढ़ी अम्मा के सर पर लगी, जिसकी वजह से बूढ़ी अम्मा की मौत हो गई तालाब पार करते हुए।
मोरल ऑफ द स्टोरी कि चाहे कोई भी स्टूडेंट कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक बार तो इंस्टीट्यूट ने उसकी लेनी ही लेनी है, इसलिए इस दर्द में मुस्कुराने की आदत डाल लो मेरी तरह, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना जरूर याद रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।
वन टीचर आस्क्ड दिस क्वेश्चन दैट इफ पोटैटोज आर 5 रुपीज किलो एंड फ्रॉग्स आर क्रोकिंग इन द पैसिफिक ओशन देन व्हाट इज माय एज। इफ पोटैटोज आर 5 रुपीज किलो एंड फ्रॉग्स आर क्रोकिंग इन द पैसिफिक ओशन देन व्हाट इज माय एज। सो वन स्टूडेंट ही सेड, मैडम योर एज इज 32। एंड शी सेड, एब्सोल्युटली करेक्ट, हाउ डिड यू नो? एंड ही सेड, मैडम माय सिस्टर शी इज 16 इयर्स ओल्ड एंड शी इज हाफ मैड। So obviously, after listening to your question, your age should be 32. So discrimination, we will end with this slide. Discrimination, which is very, very important for a practicing devotee, who has to practice devotional service, जिसको साधना भक्ति भौतिक संसार में रहते हुए करना है, तो यहां पर ये जो हम पढ़ रहे हैं, टैलेंट इज अ गिफ्ट ऑफ कृष्णा, कैरेक्टर इज आर चॉइस। बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, हम स्वयं अपने लिए कर सकते हैं कि हमारे अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े टैलेंट्स हम सब के अंदर हैं, उसके साथ हम पैदा हुए हैं। परंतु कैरेक्टर जो है वो हम हमारी स्वेच्छा से बनाते हैं। कैरेक्टर इज नॉट अ टैलेंट and talent cannot give you character. Character is not a talent and talent cannot give you character. Character is something which you have to develop yourself by your good choice. Swami Vivekananda के लाइफ की एक अच्छी स्टोरी है इसके संदर्भ में। स्वामी विवेकानंद जब वो अमेरिका गए पहली दफा, तो वहां पर एक लेडी, वो स्वामी विवेकानंद को प्रपोज करती है। सन्यासी हैं, सन्यासी और यहाँ पे एक यंग ब्यूटीफुल लुकिंग अमेरिकन प्रपोजेस टू स्वामी विवेकानंद. तो स्वामी विवेकानंद उनसे पूछते हैं, व्हाई डू यू वॉन्ट मी? तब इसने सोचा कि ये भारत से आया हुआ एक संत है, तो मैं अट्रैक्टिव आंसर देती हूं इस क्वेश्चन का, ताकि इंप्रेस होकर ये मेरा हो जाए. तो इस लेडी ने कहा, सो दैट आई कैन हैव अ सन हु विल बी एज ब्रिलियंट एज यू. क्या रीजन दिया उसने? सो दैट आई कैन हैव अ सन हु विल बी एज ब्रिलियंट एज यू. अब आप सोचिए कि किसी भारतीय पुरुष के सामने एक सुंदर दिखने वाली अमेरिकन स्त्री इस प्रकार का प्रपोजल रख रही है, साधारण भारतीय तो फिसल जाएगा, अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाएगी, अमेरिकन गोरी फिरंगी चमड़ी मिल रही है. परंतु याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और इससे हम हमारे आज के प्रवचन का विराम देंगे इस पॉइंट के ऊपर. स्वामी विवेकानंद सेड, यू वॉन्ट मी सो दैट यू कैन हैव अ सन लाइक मी, व्हाई डोंट यू हैव मी एज योर सन? दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर. और कैरेक्टर जो है वही हमारी आध्यात्मिक उन्नति का फ्यूल है. हमारी आध्यात्मिक गाड़ी को यदि हमें आगे चलाए रखना है निरंतर रूप से, तो उसके अंदर जो ईंधन है वो है ये हमारा चरित्र. And therefore, like you saw, the school of crazies or the material education, which is just teaching you how to discriminate between liking, disliking, victory, defeat, loss and gain, spiritual education teaches you not just to go through life, but to grow through life. Material education just teaches you how to prove yourself in this world. Spiritual education teaches you how to improve yourself as far as both materially and spiritually. इसलिए विशेष रूप से आप जो विद्यार्थी का जीवन जी रहे हो, आपकी इस अवस्था में आपको आपकी विवेक बुद्धि को सही ईंधन देते हुए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को सही दिशा देते हुए आपको भक्ति करनी है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय श्रील प्रभुपाद की. सो वी विल कंटिन्यू विथ आवर फर्दर डीज द स्टेजेस ऑफ 8 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. हरी बोल. So all these different topics which we are taking, themes which we are discussing, you can all have questions if you want to ask in our question answer session which we'll be having tomorrow. Kal subah hamara exclusive prashnottar ka session hoga. To jo hum log discuss kar rahe hain, if you don't have questions, be ready to answer my questions. Hari bol. To hamare Ram Kumar Panda ji aa gaye hain, aaiye inka hum hamare दूसरे सेशन में स्वागत करें। जोर से 3 बार।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो जगन्नाथ भगवान की, भक्त मंडली की। जगन्नाथ जी का कल क्षेत्र के बारे में कल कुछ बताए थे, आज प्रभु जी का जो नवकलेवर के बारे में आज चालू करेंगे। तो जगन्नाथ जी का यहाँ महाप्रभु 12 महीना में 13 यात्रा करने वाले हैं। महीना तो 12 होता है लेकिन एक यात्रा ज़्यादा है, हर हर महीना में एक एक यात्रा लगा रहता है, उसमें से एक यात्रा ज़्यादा है, क्योंकि भगवान कहीं घूमने वाले भगवान हैं, कहीं एक जगह वो हर समय चाहते हैं घूमने के लिए। कहीं खुद आते हैं तो रथ यात्रा खुद करते हैं, स्नान यात्रा खुद करते हैं, बाकी होली झूलन यात्रा ये सब अपने अपने प्रतिनिधि के द्वारा करते हैं, चंदन यात्रा। सब यात्रा में सबसे भगवान जी का कि अभी नया कलेवर गया है। नया कलेवर मीन्स नया शरीर धारण करना, पुराना शरीर को छोड़ना। जैसे मैंने कल बताया था, जैसे आदमी जैसा भगवान भी ऐसा पधारे हैं धरती पे, आदमी की तरह उनका सब काम चला। आज तो भगवान जी का श्राद्ध शुरू हो गया, भगवान का पिताजी को आज काल परसों 3 दिन भगवान उनको पिताजी को श्राद्ध देंगे। एक दो देंगे इंद्रजमन महाराज को देंगे, उसके बारे में फिर हम बताते हैं। इंद्रजमन महाराज और वसुदेव और नंदो 3 दिन को, 3 देव दीपावली हो जाएगा। अमावस्या के दिन देव दीपावली कहते हैं, मंदिर के ऊपर दिया जलेगा। जैसे हम लोग का दिवाली गया कार्तिक महीना में, अभी देव दीपावली ये अमावस्या को कहते हैं। तो यही अमावस्या को भगवान जी 3 दिन उनका पितृ को श्राद्ध देते हैं। सब आदमी जैसा उनका काम ऐसा ही चल रहता है, इसीलिए नया कलेवर हुआ उनका। जैसे हम लोग जन्म होता है फिर नया आत्मा जाके फिर नया शरीर में घुस जाता है, फिर पैदा होता है, फिर मृत्यु होता है। इसी तरह भगवान जी का देहांत भी होता है, उनका ब्रह्म जो चेंज होके नया शरीर में जाता है, इसलिए नया कलेबर कहते हैं। तो नया कलेबर तो हर समय नहीं आता है, कभी कभी आता है। जब दो आषाढ़ का महीना पुरुषोत्तम महीना आता है, आषाढ़ का महीना सात तीन साल के बाद जोड़ा महीना आता है, कभी बैसाख आएगा, कभी भाद्रव आएगा, कभी कार्तिक आएगा, तो ऐसा करके करते जब दो आषाढ़ का महीना आएगा पुरुषोत्तम महीना अधिका मास होगा, तभी भगवान जी का नया कलेवर के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। एक साल पहले से सिलेक्ट सब आयोजन किया जाएगा। तो नया कलेवर आते ही भगवान जी का शुरू हो जाएगा पेड़ ढूंढने के लिए कैसे जाएगा वनजाग यात्रा। वो वनजाग यात्रा शुरू होता है चैत्र आषाढ़ महीना में रथ यात्रा होगा, तो चैत्र महीना में चैत्र मास को शुक्ल पक्ष दशमी को वनजाग यात्रा शुरू होता है लकड़ी ढूंढने के लिए, पेड़ ढूंढने के लिए। तो भगवान जी का आज्ञा लेके शरीर में मस्तक के ऊपर एक कपड़ा, भगवान जी का गीत गोविंद का कपड़ा है, उसको बांध के जो लोग सब जाएंगे वनजाग यात्रा में, उनको भगवान जी से आज्ञा लेना पड़ता है, परमिशन, भगवान से परमिशन लेके। जैसे फिर जंगल में जाएंगे, कोई भी कपड़ा मस्तक में रहेगा तो आपको कुछ भी जंगल में कुछ भी प्रॉब्लम, सांप हो या हाथी हो कोई भी आएगा तो वो कपड़ा को देख के वो रिटर्न चला जाएगा, आपको कुछ क्षति नहीं करेगा। तो वही कपड़ा मस्तक में घुरा के यहाँ से 70 किलोमीटर्स माता मंगला टेम्पल है कोणार्क से और आगे, वहाँ पर जाके वहाँ पर दो दिन तीन दिन लगेगा, 70 किलोमीटर पैदल में जाना पड़ेगा, किसी के घर में नहीं रुकने का रास्ता में, कोई पेड़ के नीचे रुकना पड़ेगा, और वहाँ पर फिर मंदिर को शाम को प्रसाद जाएगा रास्ते में खाने के लिए, फिर प्रसाद खा के फिर वहाँ रेस्ट लेगा, फिर सवेरे पैदल में जाना पड़ेगा। भगवान जी का चार ठो माला, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, चार माला हाथ में पकड़ के कम से कम इस बार तो गए अंततः 80 लोग गए थे ढूंढने के लिए, पेड़ ढूंढने के लिए। तो सब लोग इकट्ठा होके चलते चलते फिर तीन दिन के बाद माता का मंदिर के पास पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद एक जगह में पेड़ के नीचे रुकते हैं, रुक के माता जी का मंदिर को एक चिट्ठी वो लिखा जाता है, काकटपुर मंगला का मंदिर है वहाँ, साथ में भगवान जी का चक्र एक जाएगा, चांदी का एक चक्र है जो हर साल चंदन यात्रा में 21 दिन भगवान का साथ जाता है चंदन यात्रा करने के लिए, वही चक्र सामने एक आदमी पकड़ के जाएगा, वो चक्र को वहाँ रख के माता जी का मंदिर में लेटर लिखा जाएगा जो हम लोग जगन्नाथ मंदिर से आए हैं, हम लोग को नवकलवर के लिए पेड़ ढूंढना है, माता जी को पूजा करने के लिए हम लोग जाएंगे। तो माता जी का मंदिर का लेटर लेके पहुँचाएंगे, फिर माता जी का मंदिर से तुरी वाद्य सब ला के फिर हम लोग को लेके फिर माता जी का मंदिर में एक दिन पूजा होगा। वो पूजा करने के बाद सीधा हम लोग वहीं से निर्देश मिल जाएगा जे कहाँ कौन सा दिग में भगवान जी का पेड़ मिलेगा। वहाँ से फिर लौट के आके वो जो जागर पेड़ के नीचे हम लोग रुके हैं वही रुक पेड़ के नीचे 7 डेज उधर एक टाइम हविषा अन्न करके खा के फिर रात को सोना होगा माता जी को निर्देश मिलने के लिए। वहाँ से फिर 7 दिन 8 दिन या 10 दिन के अंदर जरूर मिल जाता है, और मिलने के बाद फिर उसी दिशा में पेड़ ढूंढने के लिए हम लोग जाते हैं। पेड़ ढूंढने के लिए कम से कम 10 दिन 15 दिन या 20 दिन भी लग सकता है, इस बार से 15 दिन लग गया पूरा पेड़ ढूंढने में। तो पेड़ सिलेक्ट किया जाएगा, सब पेड़ ला के सिलेक्ट किया, हर पेड़ में सब माप किया जाएगा, इसमें भगवान जी हो सकता कि नहीं, इसी पेड़ में सफिशेंट काठ मिलेगा या नहीं, फिर उसको फिर सिलेक्ट किया जाएगा, उसमें शंख चक्र गदा पद्म सिंबल है कि नहीं, उसमें कोई पक्षियाँ घर किया कि नहीं, उसमें स्नेक गार्ड करता कि नहीं, तो वहाँ से बैठे एक दो घंटा बैठने से वो सर्प आके आपको दिखाई देगा, उसका आसपास घूमता रहेगा सर्प। तभी ये सब सिंबल देखने के बाद वो पेड़ को सिलेक्ट किया जाता है, और जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा और सुदर्शन चारों को सिलेक्ट होने के बाद पहले सुदर्शन भगवान जी का पास, वहाँ से सब लोग वही जगह छोड़ के फिर सुदर्शन भगवान जी का पेड़ का पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर फिर भगवान यहाँ से जो माला जाता है सुदर्शन भगवान का पेड़ में माला लगाया जाता है, पेड़ को स्नान किया जाता है और माला लगा के वहीं पर अधिवास होता है यज्ञ के लिए। पेड़ को काटने के लिए वहाँ पर यज्ञ करना पड़ता है, आहुति देना पड़ता है, वो फिर पाताल नरसिंह मंत्र में वहाँ पर आहुति देना पड़ता है। तो पाताल नरसिंह मंत्र आहुति देने से 100 मंत्रों के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगता है। एक बार पढ़ाई किया गया, एक बार आहुति दिया जाएगा, फिर शुरू होगा। इसी तरह 1100 मंत्रों में आहुति दिया जाएगा पाताल नरसिंह मंत्र में, तभी जाके भगवान जी को पेड़ को काटना पड़ेगा। तो 2.5 दिन या लग जाता है यज्ञ शेष होने तक, यज्ञ शुरू से और यज्ञ शेष होने तक जो हम लोग दैत्यापति लोग हैं, हम लोग सब बिना पानी पिए वहाँ पर निर्जल रहना पड़ता है। आज शाम से काल दिन भर, काल रात, परसों फिर 2, 3, 4 जब भी पेड़ के शुरू होगा कटाई तब तक हम उपवास रहना पड़ता है। फिर यज्ञ खत्म होगा, पूर्णाहुति होगा, उसके बाद चांदी का बारिश और सोने का बारिश टच किया जाएगा, उसके बाद लोहे के बारिश में कटाई किया जाएगा पेड़ को। वो तो पेड़ को काटने से कम सुदर्शन जी का पेड़ तो 5 घंटा लग गया काटने में। ऐसे पेड़ जब गिरेगा तभी जाके भोजन करेंगे हम लोग। तो पेड़ गिरने के बाद जितना ज़रूरत है उतना लकड़ी एक एक, उसी दिन आपको दिखा गया था जो कोयल वैकुंठ में जो गाड़ी है उसमें से ला गया था, तो जितना ज़रूरत है उतना लकड़ी वो गाड़ी के ऊपर रख के फिर सुदर्शन भगवान जी को मंदिर के तरफ आना शुरू किया जाता है खींच के। बाकी कुछ लोग सुदर्शन भगवान के साथ आ जाएंगे, बाकी कुछ लोग चले जाएंगे बलदेव जी का पास। ऐसे करते करते चारों भगवान का पास इसी तरह करते करते 2 महीना स्नान यात्रा का 2 दिन पहले इस बार जगन्नाथ जी का पेड़ आके पहुंचा। ये कम से कम खींच के लाने से वो गाड़ी को, जो लकड़ी का गाड़ी आप लोग ने देखे हैं उसको खींच के लाने के लिए 3 किलोमीटर को 1 घंटा लगता है। ऐसे कम से कम दिन को 12 किलोमीटर आ सकता है गाड़ी। इस बार सबसे हाईएस्ट आए थे बलदेव जी दूर से 150 किलोमीटर। कभी कभी वो गाड़ी खींचने के टाइम पेड़ में आग आ जाता है, वो जो व्हील हर समय घूमता रहता है तो उसमें पेड़ लग के लकड़ी में घिसा होके अग्नि निकलता है, तो फेयर वाला भी साथ में रहते हैं, वो भी ठंडा करते हैं उसको, फिर 1 घंटा रुका जाता है, फिर खींच के लाते हैं, पर हाथ में खींच के लाना पड़ता है। तो उसी तरह भगवान जी का चारों लकड़ी आके मंदिर में रखा जाएगा, फिर स्नान यात्रा शुरू होगा पुराना भगवान का। पुराना भगवान का स्नान यात्रा शुरू होगा तो पुराना भगवान जी स्नान मंडप में आएंगे, स्नान करेंगे, 108 घड़ा पानी में स्नान करेंगे। और ये जो नया भगवान आए हैं पेड़ में, जो गाड़ी के ऊपर रखा होके लकड़ी जो आए थे, उनको भी 108 घड़ा पानी नहाना किया जाएगा, वो भी बुखार में पड़ेंगे, वो भी रहेंगे अंदर में, उसको कोई नहीं देखेगा। इधर पुराना भगवान जी जाके अपना, जैसे हर साल बुखार होता है बंद रहता है 15 दिन, तो नवकलेवर के टाइम पे 45 दिन पुराना भगवान बंद रहेंगे। तो स्नान यात्रा के दूसरे दिन कोयली वैकुंठ में निर्माण कार्य शुरू होगा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन सबका निर्माण जो फ्रेम है वो फ्रेम बनाना शुरू होगा। ये फिर पूर्णिमा दूसरे दिन से शुरू होगा, अमावस्या पहले खत्म होगा और अमावस्या को दिन को नया भगवान जी को लेके पुराना भगवान के सामने रखा जाएगा और पुराना भगवान जी से जो ब्रह्म है वो चारों लोग आँख में बांध के हाथ दिखा के रहेंगे तो ब्रह्म ला के फिर नया भगवान में डालेंगे। ये ब्रह्म चेंज करने का टाइम अवधि 12 घंटा से ज़्यादा लगता है, कम से कम 12 घंटा लगेगा। प्रति नवकल्प को देखा गया 1977, 1996, अभी ये हम लोग मैंने 3 नवकल्प तो देखा है अपने नज़र में, तो 12 घंटा से कम नहीं लगता ब्रह्म चेंज करने के लिए। तो ब्रह्म चेंज जिस दिन अमावस्या को हो जाएगा फिर पुराना भगवान जी को लाके समाधिस्थ किया जाएगा, उसके बाद मंदिर दरवाजा खुलेगा। मंदिर पूरा चाबी लॉक करके हम लोग अंदर रहेंगे, अंदर रह के ये सब काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर 1 महीना और भगवान जी का शरीर को गठन करने में लग जाता है। पूरा 1 महीना के बाद फिर रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा को नया भगवान दर्शन मिलता है। जगन्नाथ जी जब नया शरीर लेके आते हैं, पहले जाते हैं जनकपुरी गुंडीचा मंदिर में बैठने के लिए, वो रत्न सिंहासन में नहीं बैठते हैं, स्नान यात्रा के बाद वो बीच में रह जाते हैं। तो फिर जन्मस्थान टच करके फिर रथ के ऊपर बैठ के फिर भगवान जी आके मंदिर में साल भर बैठते हैं। अभी भगवान जी को फिर बनाने में थोड़ा जो बाकी है, दो रथ यात्रा के बाद भगवान का शरीर ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह नवकलवर यात्रा भगवान जी का कम से कम 19 साल या 20 साल या 12 साल जब 2 आषाढ़ का महीना होता है तो नवकलवर भगवान जी का किया जाता है। और एक भगवान जी का यात्रा है नागार्जुन श्रृंगार, तो नागार्जुन श्रृंगार 25 साल में एक बार आता है, ये 1 दिन का होता है और 1 दिन का भी दर्शन है, फिर वो फिर 25 साल के बाद एक बार आएगा जो कार्तिक महीना में 1 दिन ज़्यादा आएगा, 30 दिन के बाद 31 दिन जो आएगा तो उसमें उसी दिन नागार्जुन श्रृंगार भगवान जी होंगे। ये भगवान जी का यात्रा और लीला चलता रहता है। भगवान जी का अभी अभी तो शयन यात्रा था, एकादशी शयन एकादशी को भगवान जी सोए थे और भाद्र महीना में पार्श्व परिवर्तन एकादशी हुआ तो साइड होके सोए, और कार्तिक में उत्थापन एकादशी हुआ भगवान जी उठ गए। ये हरि भगवान का ये जो कभी भी साधु संत भी जहाँ जाते थे आगे पहले जंगल भंगल जहाँ जाते थे तो जहाँ जाते थे चतुर्मास 4 महीना वहीं रुक जाते हैं, ये भगवान जी का लीला है, हम लोग का बात नहीं है। तो भगवान जी का एकादशी से लेके एकादशी पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा संक्रांति से लेके संक्रांति सब दिन को गिन गिन के यात्रा या उत्सव सब किया जाता है। झूला यात्रा खत्म हो जाएगा श्रावण महीना में, फिर भगवान जी का गुप्त गुंडीचा यात्रा शुरू होगा। वो क्या है ना, जगन्नाथ जी जो बाहर रथ यात्रा के लिए जाते हैं तो माता लक्ष्मी जी को साथ में नहीं लेके जाते हैं, तो माता लक्ष्मी ढूंढते ढूंढते जाके गुंडीचा मंदिर में पहुंचते हैं, उसको हेरा पंचमी कहते हैं। उसी दिन माता लक्ष्मी यहाँ से गुंडीचा मंदिर जाएंगे। गुंडीचा मंदिर जाते जाते जगन्नाथ जी का खाने का टाइम था तो जगन्नाथ जी का दरवाज़ा बंद हो जाता है, माता देवी भगवान का मिल नहीं सकते, तो गुस्सा होके भगवान का जगन्नाथ जी का एक हुईल तोड़ के चले आते हैं। तो भगवान को पता चलता है माता देवी आए, तो दूसरे दिन अपने सारथी को बोलते हैं रथ घुमाने के लिए, यात्रा उल्टा करने के लिए। उसी दिन शुरू होता है उल्टा रथ का यात्रा, रथ को घुमाया जाता है। तो फिर रथ 9वां दिन के बाद भगवान जी इधर आते हैं मंदिर के पास, मंदिर से बलदेव जी आके पहुंच जाएंगे, सुभद्रा जी भी आके रथ पहुंच जाएगा, जगन्नाथ जी का रथ जब आएगा तो राजा का मकान के सामने रथ रुका रहेगा, वहां से माता देवी को फिर राजा ने लेके आएंगे, माता लक्ष्मी को फिर जगन्नाथ जी से मिलाएंगे, कॉम्प्रोमाइज मिला के फिर माता देवी निकल जाएंगे अपने मंदिर में। जिस दिन भगवान जी अंदर घुसेंगे तो बलदेव जी को छोड़ देंगे, सुभद्रा जी को छोड़ देंगे, सुदर्शन जी को छोड़ देंगे, जगन्नाथ जी जब अंदर घुसेंगे तो दरवाजा माता देवी ने बंद कर देंगे, तो जगन्नाथ जी उनके फिर उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बात करेंगे, माता देवी से पूछो मैं ये लाया हूँ वो लाया हूँ, इधर हम भाई बहन के साथ गया था घूमने के लिए, अगले टाइम में आपको लेके अलग हम घूमने जाएंगे। तो वही जो बातचीत में कॉम्प्रोमाइज होता है, फिर दोनों को रसगुल्ला भोग होता है, फिर भगवान जी जगह अंदर जाते हैं। ये भी देखो घर का स्टोरी जैसा ऐसे ही है आप लोग। तो इसी तरह भगवान जी फिर माता देवी को लेके आसिन महीना में फिर नवा दिन यात्रा करते हैं, जगन्नाथ जी माधव होके छोटा मूर्ति माधव होके छोटा पालकी में बैठते हैं, और लक्ष्मी जी भी दुर्गा होके एक पालकी में उनके साथ बैठते हैं। तो दुर्गा माधव दोनों मिलके ये गुप्त गुंडीचा करते हैं, नारायण टेम्पल है ये, आसिन महीना में ये नवा दिन यात्रा होता है। तो फिर कार्तिक का यात्रा राधा दामोदर श्रृंगार होता है, एक महीना पूरा जैसे हम लोग दामोदर पूजा करते हैं अपना मंदिर में, इसी तरह भगवान जी का जगन्नाथ जी का राधा दामोदर श्रृंगार एक महीना होता है, और उसके लिए अलग सा भोग खाएंगे 56 भोग के अलावा, गेहूं का भजा, लाई का नमकीन का भजा, चिड़े का भजा, सब अलग अलग सब मुख को थोड़ा स्वीट खाते खाते ये करें, कार्तिक महीने थोड़ा नमकीन का खाएंगे भगवान। तो ये अलग टा भोग होगा, राधा दामोदर श्रृंगार होगा, राधा दामोदर आरती होगा, फिर जाके एक महीना के बाद ये खत्म होता है। कम से कम बहुत भीड़ होता है इधर कार्तिक महीना में। वो कार्तिक महीना निकलते ही आपका तीर्थ परिक्रमा आ जाता है, काल मैंने बताया था तीर्थ परिक्रमा का यात्रा और प्रथमा अष्टमी यात्रा, जो घर में बड़ा बेटा या बड़ा बेटी रहता है उसका पूजा किया जाता है, तो बलदेव जी का पूजा किया जाता है, प्रथमा अष्टमी गया है। अभी फिर 15 दिन के बाद आएगा ओढ़न षष्ठी, भगवान का ठंडी होने के लिए कम से कम रेजी पहनेंगे भगवान जी, प्रति भगवान को 19-19 कपड़ा में मफलर किया जाएगा, टोपर किया जाएगा, टाई किया जाएगा, सब कपड़ा में सब किया जाता है, कोई कैप जैसा ऐसा घुमा घुसा के नहीं किया जाता है, कपड़ा में सब बना के करते हैं। उस तरह कम से कम 1.5 घंटा लगेगा एक एक श्रृंगार के लिए ठंडी दिन में, सिर्फ मुख दिखाई देंगे और कुछ दिखाई नहीं देंगे जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा जी का। ये ठंडी दिन का श्रृंगार ये पूरा 16 तारीख से फिर मकर संक्रांति तक चलेगा, जो भगवान का द्वादश यात्रा होता है मकर संक्रांति। इसी तरह 12 महीना में यात्रा करते करते जगन्नाथ जी लास्ट को स्नान यात्रा करते हैं, स्नान के बाद फिर भुकार होता है, भुकार के बाद जगन्नाथ जी रथ यात्रा में फिर रथ यात्रा करते हैं। इसी तरह साल भर लगे रहता है भगवान का यात्रा। हरि बोल। तो जगन्नाथ जी का स्टोरी कथा ये, और भगवान स्वयं श्री कृष्ण का भगवान का अवतार जगन्नाथ जी यहाँ रूप लेके यहाँ पर है। तो इधर जो भगवान जी का जो भोग होता है आपको अभी बता देता हूँ, भगवान जी का जो भोग होता है जब मंत्र पढ़ता रहता है भोग करने के टाइम 45 मिनट लगता है या आधा घंटा लगता है, हाथ के पानी के ऐसे पकड़ेंगे उसके ऊपर जगन्नाथ जी का मूर्ति का स्वरूप आएगा, तभी जाके नैवेद्य करने से भगवान जी का भोग होता है। किचन में भोग बनता है लेकिन आपको खुशबू नहीं आएगा, जगन्नाथ जी के पास जाता है फिर उधर भोग लगता है 45 मिनट, भोग के बाद दरवाजा जब खुल जाता है जहाँ चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर दर्शन करते थे वहाँ पर खुशबू आ जाता है भोग प्रसाद का। ये पुरी का प्रसाद का महात्मा है। तो वही प्रसाद भगवान पहले माता विमला देवी को निवेदन किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? कई समय के बात है, जब भगवान का इधर शिव जी और पार्वती जी दोनों को हर देवता लोग को भगवान विष्णु का प्रसाद मिलते थे, तो एक दिन भगवान पार्वती एब्सेंट में शिव जी ने पार्वती जी का प्रसाद ले लिए। तो शिव पार्वती जी आके बोले, मेरे को क्यों ये प्रसाद नहीं मिला? तो प्रार्थना किए और तपस्या में बैठे, फिर भगवान को मिले। भगवान को पूछे, जे मेरा क्यों, क्या गलती किया था, एक दिन मेरे को क्यों प्रसाद नहीं? ना, तुम्हारा इतना भाग्य है, जितना हम भोग लगेगा तुमको ही मिलेगा, लेकिन ये जन्म में नहीं, कलयुग में जो एक जगह आएगा, ऐसा तीर्थ स्थान आएगा जहाँ पर मेरा प्रसाद तुमको सभी मिलेगा। तो यहाँ जो भोग लगता है, प्रसाद होता है, माता विमला देवी को निवेदन किया जाता है, इसलिए इसको महाप्रसाद कहलाता है संज्ञा। तो ये महाप्रसाद जितना देवी, ये क्या है ना, विमला माता जो शिव जी का, जो पार्वती जो देहांत हुए थे, उसको शरीर को लेके महादेव ने घुमाया, घूमते घूमते फिर रुका नहीं, तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र छोड़ के शरीर को एक एक पीस करके काट के करा, तो 52 जगह में गिरा था। तो 52 पीठ में ये एक पीठस्थान है माता विमला माता, जो आप लोग ने दर्शन किया है। फिर मंदिर का एक जगह है, वो हनुमान जी आपको दिखाया था, कान पत्ता हनुमान। भगवान जी का जब सोए तो पत्नी, उनका पत्नी लक्ष्मी जी का पिताजी है समुद्र, तो समुद्र का जो आवाज है उसमें से भगवान जी का नींद में डिस्टर्ब आया, तो हनुमान जी ने उनको पता चला, वो आके प्रभु जी को निवेदन किए, जे हम आपके ये आवाज को ग्रहण करेंगे, आप आराम से सोइए। तो उन्होंने कान दिखा के सब आवाज समुद्र का ले जाते हैं, तो बाउंड्री के बाहर आवाज आता है, बाउंड्री के अंदर समुद्र का आवाज नहीं आता है, इसलिए कान पता हनुमान पश्चिम दरवाजा में रखा। चारों दरवाजा में चारों हनुमान है, प्रति गेट में हनुमान है, जो झंडा है वहां पर ध्वजाधिपति हनुमान है, हर जगह में हनुमान गाड़ करके मंदिर को रखे हैं, क्योंकि वो भक्त है, भगवान को किसी तरह रखना उनका कंट्रोल में, वो जानते हैं। जय जगन्नाथ।